इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये फरमाया कि वही रब है जिसने तुझको, यानी वो अल्लाह सुबहानहु व तआला है जिसने या रसूल अल्लाह आपको हमतन करम बनाए, यानी आपके पूरे जिस्म को करम ही करम बना दिया। आपका पूरा जिस्म सर से लेके पाँव तक करम ही करम है। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था दिखाया कि हम लोग भीख मांगे तो कहाँ मांगे, तो अल्लाह ने तेरा आस्था बता दिया कि भीख मांगनी है तो इनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। तुझे हमद है खुदाया, ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ऐसा एक भीख मांगने की एक ऐसी जगह अता फरमाई है। और ये हम लोग सहाबाए किराम की ज़िंदगी में देखते हैं, कुछ भी होता था तो हाजिर होते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह खाना ख़त्म हो चुका है, या रसूल अल्लाह पानी ख़त्म हो चुका है, या रसूल अल्लाह मैं सुनता हूँ आपकी हदीसें याद नहीं रहती, या रसूल अल्लाह खेती सब सूख गई है पानी नहीं बरस रहा है, या रसूल अल्लाह मेरी बकरी मर गई है, या रसूल अल्लाह मेरा ऊँट भाग गया है, या रसूल अल्लाह मेरे दरख नहीं उग रहे हैं। ये सब जो कोई परेशानी होती थी लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भीख मांगने आ जाया करते थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया कि ए मेरे सहाबा मैं आया हूँ यहाँ तुम लोगों को एक खुदा को मानने का सबक देने के लिए, तौहीद सिखाने के लिए मैं आया हूँ। तो पहले तुम लोग जाते थे अल्लाह के अलावा से मांगने, आज भी तुम अल्लाह के अलावा से मांगने आ रहे हो, गैर खुदा से मांगने आ रहे हो, मुझसे मांग रहे हो। ये नहीं फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कभी ये नहीं फरमाया, बल्कि उल्टा आपने तो ऐलान कर दिया कि इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, रब है मौती ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। तो इसलिए आला हज़रत ने यह शेर लिखा कि हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, और हमतन करम बनाया, यानी आपका पूरा जिस्म करम ही करम है। इसका मतलब यह है कि आप कभी ना नहीं फरमाते थे। कहते हैं उलमाए किराम कि आप ला अरबी में कहते हैं नहीं को, आप नहीं कभी नहीं फरमाते थे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह में, कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, इसके अलावा आप ला नहीं कहते थे। कोई कुछ भी मांगे आप हमेशा देते थे। न यहाँ हाजत, न यहाँ कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला कहते, न कभी अगर कहते थे, बस सब कुछ आपके पास से मिलता था। उसी का मतलब है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, यही उसका मतलब है। और हमातन यानी पूरा जिस्म, तो अब पूरा जिस्म देखे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की क्या शान थी कि दौड़ता हुआ जो खून होता है, दम मसफू, जो फ्लोइंग ब्लड है, फ्लोइंग ब्लड कुरान शरीफ में उसको हराम और नजिस करार दिया है, अद्दमुल मसफू, जो बहता हुआ खून है। तो एक हबशी सहाबी ग़ुलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से खून निकाला, पछना लगाया, कपिंग, उसने कुछ खून निकाला, तो वो निकाला जाता है मैला खून, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहाँ मैला खून होगा। आपने तो ये इसलिए किया ताकि उम्मत इसको सीखे और इसको सुन्नत समझकर करे, ताकि उम्मतियों का जिस्म हेल्थी बने, स्ट्रॉन्ग बने और तंदुरुस्त बने। उस खून को निकालने से जिस्म तंदुरुस्त होता है, बेहतर होता है, बीमारियां से महफूज होता है। हाँ, ख़ास ख़ास जगह होती है वहाँ से खून थोड़ा निकल। तो ये एक ग़ुलाम ने पीठ से निकाला और जैसे वो खून दौड़ता निकला तो उसने फौरन मुंह लगा के पी लिया उसको। अब ये तो नजिस, खून तो नजिस होता है और हुक्म शरह तो यह है कि ये नाजायज़ और हराम है, और हुक्म यह है कि अगर कोई पी ले तो उसको उल्टी करके निकाले, ये हुक्म है। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा तो इन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह इसको मैं पी लिया, तो आपने ये फरमाया कि जाओ तुम्हें जहन्नम की आग कभी नहीं जला सकती। तो आपका हमातन करम, हमातन आपका पूरा जिस्म करम ही करम था। और इतना नहीं बल्कि एक नहीं बल्कि कई रिवायात ऐसी मिलती है कि रात के वक्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे और आपको इस्तिंजा की हाजत हुई तो आपने पेशाब किया एक बर्तन में। उस ज़माने में तो इस्तिंजा खाना नहीं था, वो बर्तन में नजासत इस्तिंजा वगैरह कर लेते थे, फिर उसको सुबह में پھینک کے آتے، جو کچھ کرنا ہوتا اس کو کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت میں حاجت ہوئی، تو آپ جاگے اور آپ نے دیکھا کہ یہ برتن خالی پڑا ہے اور یہ اسی کے لیے ہے، استنجا وغیرہ کے لیے، تو آپ نے اس میں استنجا فرمایا۔ یہ خاص جو برتن ہوتے تھے اس زمانے میں، اسی میں اجازت ہے، ہمیں کوئی اجازت نہیں کہ کسی بھی برتن میں اٹھا کے کہے کہ سنت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس وقت ایسے خاص کچھ برتن ہوتے تھے، تو آپ نے استنجا کیا اور اس کو آپ نے ڈھانک کر رکھ دیا۔ اب ایک روایت ہے سیدہ ام سلیم کے بارے میں کہ آپ جاگی اور آپ کو پیاس لگی تھی، تو اب آپ نے تلاشا کہ کچھ پینے کو ملے، تو بہت خوشبو آ رہی تھی اس برتن سے، تو آپ نے جب اس کو کھولا دیکھا کہ بہت خوشبودار یہاں کوئی پینے کی چیز رکھی ہوئی ہے، یہ تو کوئی پیشاب کا برتن تو نہیں ہو سکتا، اتنی خوشبو یہاں تو کیسے آ رہی ہے۔ آپ نے اس کو پی لیا۔ اب صبح میں پتہ چلا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیشاب فرمایا تھا اور یہ انہوں نے پی لیا۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں، اتنی خوشبو آ رہی تھی، میں کیا کروں؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو ناجائز ہے، ایسا آئندہ کبھی مت کرنا، بلکہ آپ نے اسے بھی یہی فرمایا کہ جاؤ، جہنم سے تم پاک ہو گئی، جہنم کی آگ تمہیں نہیں جلا سکتی۔ تو یہ دیوانوں کی بات ہے کہ ایسا ایسا ہوتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب تک صحابہ کرام نے پی لیا اور ان کو یہ فائدہ ہو گیا، تو آپ کا پورا جسم کرم ہی کرم تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہی حاکم برایا۔ برایا کا معنی ہوتا ہے مخلوق، مخلوق خدا، اور تم ہی یعنی آپ ہی حاکم ہیں، آپ ہی کو اللہ نے حاکم برایا بنایا۔ حاکم آپ ہی ہے، آپ جس کو چاہے حکم دے تو وہ ہونا ہی ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگوں نے کتنا دیکھا کہ جب حکم فرمایا درخت کو کہ یہاں آ جاؤ، تو وہ درخت زمین میں سے نکل کر اپنے روٹس کو زمین میں سے کھینچ کر نکال کر آ جاتا تھا۔ کبھی کبھی سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کی حاجت ہوتی تھی، تو درخت بہت دور ہوتے تھے، تو آپ یہی سے پکارتے تھے کہ آ جاؤ اور مجھے یہاں پردہ عطا فرماؤ تاکہ میں یہاں استنجا کروں۔ تو وہ درخت آ جاتے تھے، آپ استنجا فرماتے تھے، پھر اپنی جگہ پہ واپس چلے جاتے تھے۔ تو یہی مطلب حاکم برایا۔ اور کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ کوئی آیا، کہا کہ آپ ہی محمد ہیں، تو کہا ہاں میں محمد ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ کبھی کہتے تھے کہ جاؤ فلاں درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم وہاں حاضر ہو جاؤ، تو وہ دیکھتا، جا کے بولتا، تو بولنے کے بعد وہ دیکھتا کہ وہ فوراً بھاگے بھاگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا۔ درخت، اور کبھی کبھی کھجور آپ فرماتے تھے تو وہ نیچے اتر کے آتا تھا اور آپ کی بارگاہ میں، آپ کے قدموں میں گر جاتا تھا۔ اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ حال تھا، جب آپ ایسا حکم فرما دیتے تھے کہ رک جاؤ، تو وہ آدمی رک جاتا تھا، وہاں سے ہل نہیں پاتا تھا۔ یہ وہی بات ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ ناخوش ہے۔ جنگ کے میدان میں ایک صحابی کا واقعہ، اور ایسے کئی روایت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جنگ چل رہی ہے گرما گرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ چکی ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت میں سے ایک ٹہنی کو اتار توڑ کے نکالتے اور کہتے لیجئے یہ تلوار ہے تمہاری، جیسے وہ ہاتھ میں پکڑتے وہ تلوار بن جاتی تھی۔ تو یہ آپ کا حال تھا کہ آپ پوری مخلوق خداوندہ کے حاکم تھے۔ ہجرت کے موقع پہ جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے مدینہ شریف کی طرح، اس وقت جو گھوڑا پیچھا کر رہا تھا تو آپ نے کہا رک جا، تو فوراً رک گیا، دھس جا تو دھسنے لگا وہ۔ یہ سب حکومت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ کبھی کبھی آپ کی مرضی کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، وہ آپ کی مرضی کی بات ہوتی تھی۔ جب آپ چاہتے تھے تب اپنا حکم چلاتے تھے، اور جب چاہتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی مرضی تھی۔ آپ چاہتے تو فرماتے ہیں لو شئت لسارت مئی جبال الذهب، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے، میں ایک قدم لوں تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آئے، سونے کے پہاڑ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا، لیکن آپ نے اختیار فرمائی تھی غریبی زندگی، اور کتنا آپ میں حلم تھا، حلم हिल्म का मतलब होता है कि नहीं अच्छा लगता लेकिन फिर भी उसको छोड़ दे। वैसे ही अल्लाह सुबहानहू व तआला की एक सिफत है अल हलीम। अल हलीम होता है सब्र की तरह, एक तो है अस्सबूर और एक है अल हलीम, सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला और सबसे ज़्यादा हिल्म वाला, बुर्दबारी वाला, ये मतलब होता है। तो हिल्म और सब्र दोनों करीब करीब एक तरह होते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि सब्र आदमी के लिए उस वक्त ज़्यादा बोला जाता है जब आदमी के पास ताकत ना हो जवाब देने की, ऐसे के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन आदमी खूब मार रहे हैं इसको और ये सब्र कर रहा है बेचारा, आदमी उसका खूब मजाक उड़ा रहे, गाली दे रहे, वो सब्र कर रहा है, तो इसे आदमी को साबिर कहते हैं। और यहाँ जब अल्लाह के लिए सबूर इस्तेमाल हुआ तो वो इस माने में नहीं, इस माने में भी इस्तेमाल होता है। अब जब हलीम कहा जाए, हिल्म जब आदमी में होता है उसका मतलब होता है कि जवाब देने की ताकत है, वापस लड़ने की भी ताकत है, लेकिन फिर भी सब्र कर रहा है। तो ये फ़र्क है। तो हिल्म जो है अल्लाह सुबहान व तआला में, अल्लाह की तो सिफत है अल हलीम, और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बहुत था कि आप चाहते तो फौरन मामला बदल लेते, लेकिन आप में हिल्म थी, हिल्म की सिफत थी, इसलिए आप उसको छोड़ देते थे। अबू जहल के बारे में है कि आप जब मक्कतुल मुकर्रमा में काबा के बाहर जब आप अपने सहाबा को तालीम फरमाते थे तो अबू जहल पीछे खड़े खड़े बुरी भली बातें कहता था। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो बस एक मर्तबा कहते थे कि तेरा मुंह बंद हो जाए, उसका मुंह बंद हो जाता। लेकिन ये हिल्म और बुर्दबारी थी आप में कि आप नहीं कहते थे, आप खामोश रहते थे, बल्कि उल्टा आपने तो ये दर्स दिया लोगों को। आप फरमाते थे कि अल्लाह इसको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह इसको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह इसको हिदायत, ये आप फरमाते थे, यह आपका तरीक़ा था। इससे हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि जो लोग हमें बुरा भला कहते हैं तो कभी कभी उनके लिए दुआएं भी कर लेनी चाहिए कि अल्लाह सुबहानहु तआला उन लोगों को हिदायत अता फरमाए। और आला हज़रत फरमाते हैं तुम ही कासिम अताया, जितनी भी अल्लाह की नेमतें हैं अताया हैं वो सब के कासिम आप हैं, जैसे पहले शेर में हमने सुना। तुम ही दाफ़िए बलाया, बला मुश्किलात परेशानियाँ जो भूत परी जिन से भी होते हैं और इंसानों से भी होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं, हर तरह की परेशानी बीमारी वगैरह जो कोई भी बला हो वो सब बला में शामिल है, और तुम ही दाफे हो उन सब के। दाफे यानी दफा करने वाले, तुम ही दाफे बलाया यानी तुम ही सब बलियात और मुश्किलात और परेशानियों को दफा करने वाले। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि क्यों रज़ा मुश्किल से डरी है, मुश्किल से क्यों डरें। जैसे अभी फैसल साहब ने नाज शरीफ में सुनाया कि जो लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत में रहते हैं तो उन्हें गम से क्या घबराना है, वो नहीं घबराते। तो यही हाल है, आला हज़रत फरमाते हैं क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा है, जब हमारे ही नबी मुश्किल कुशा है, जब यही मुश्किल कुशा है तो हम क्या मुश्किल से डरिए। जब चाहेंगे तब आप मुश्किल कुशाई फरमाएंगे, उस मुश्किल को दूर फरमा देंगे। और हम लोग तो बरेलवी लोग हैं और हमारे बुजुर्गान दीन की क्या शान है कि आला हज़रत ख़ुद फरमाते हैं कि क्या फरमाया आपने, बोल बाले मेरे सरकारों के, इस तरह जो शेर है आला हज़रत का कि बोल बाले मेरे सरकार, कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा, ये फरमाया आपने कि हम तो चाहे गुनहगार हो हम कैसे भी हो लेकिन कैसे आकाओं का बंदा हो, हमारे आका लोग कैसे हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरे सरकारों के। मेरे सरकार लोग इतने बड़े बड़े हैं, ग़ौसे आज़म है, ख्वाजा गरीब नवाज़ है, ये जुनेद बगदादी है, और कैसे कैसे इमाम अबू हनीफा, और इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं हमारे, हम लोगों को क्या परेशानी है, हमारे सरकार लोग तो बहुत बहुत बड़े लोग हैं। यही आला हज़रत फरमाते, और फरमाए तुम ही शाफ़ी ख़ताया, ख़ताया यानी गलतियाँ गुनाह, चाहे छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, कैसा भी गुनाह हो, कैसी भी भूल हो, ख़ता हो, आप ही उसके शाफ़े हैं। शाफ़े यानी उसको माफ़ करवाने वाले, शफ़ात करने वाले उन सब गुनाहों की। कोई तुम सा कौन आया, आप जैसा कौन आया है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा कोई इस दुनिया में आया नहीं है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसको اس کے دوسرے اشعار کی تشریح کر لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و برحمتک یا ارحم الراحمین.